इससे सुख मिलता है, हमें मिला है और मिलेगा, गलत धारणा है। ऐसा भोगते भोगते कभी सुख नहीं मिल सकता, ध्यान रखना। इस वस्तु तत्व को पा लेने के बाद में इसके भीतर में ऐसी भोगने की आकांक्षाएं जीवित हैं, वो कभी वस्तु तत्व को प्राप्त ही नहीं हो सकता है, शांति को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। हमें इतने अच्छे देव गुरु शास्त्र मिले और इनको पा लेने के बाद में भी यदि हमारे अंदर में उनके बदले में आकांक्षाएं पैदा रही, तो हमें तो ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की तरह है वो, कि जैसे कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ करके वो पेड़ से याचना करे कि हे पेड़ तुम हमें छाया दे दो। पेड़ के नीचे बैठ करके कोई व्यक्ति पेड़ से याचना करे, प्रार्थना करे कि हे वृक्ष तुम हमें छाया दे दो, तो आचार्य कहते मूर्ख, पेड़ के नीचे बैठने वाले को तो बिना मांगे स्वयं छाया कि नहीं मिलती? मिलती। आप जानते हैं कि पेड़ के नीचे बैठने वाले को छाया स्वयं मिल जाती है, वहां मांगना नहीं पड़ता है। जो मांगता है वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो जानता नहीं है। ऐसी स्थिति हो रही कि देव शास्त्र गुरु की चरण सानिध्य में पहुंचने के बाद, उनकी चरण छाया में पहुंचने के बाद में संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो नहीं मिलती है? उन्हीं की चरणों की देन से ही सब कुछ मिलता है। वो देते लेते कुछ नहीं है, लेकिन वहां जाकर के कोई मांगे तो उस जैसा कोई अज्ञानी और मूर्ख नहीं होगा कि वहां जाकर के ये मांग रहा है। अरे आत्मा के सुख की बात वहां की होती तूने, शुद्ध आत्मा से आने वाले आनंद की अनुमति की बात यदि की होती कि भगवान जैसी आपने प्राप्त की है ऐसी मुझे भी प्राप्त हो जाए, तो हम मानते कि भगवान को आपने ठीक ठीक समझा है। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, हम शुद्ध आत्मा की अनुभूति तो करना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा की अनुभवन के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। विषयों के प्रति ऐसे आमूल चूल डूबे हुए हैं इनमें, विषय भोगों में, और शुद्ध आत्मा की अनुभूति के प्रति आकांक्षा रख रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा का आनंद आएगा। ये दृष्टांत याद आ गया मुझे, दो कीड़े होते हैं, अकल में सकल में सभी एक जैसे लगते हैं। भौरा देखा होगा आपने, भौरा होता ना, भमर, कैसा होता है वो, काला काला होता है, इतना बड़ा होता है, आपने देखा हो, जानते हैं। उसका भी एक भाई और है, उसे भी आपने देखा होगा, गोबर में रहता है वो। कहां रहता है, क्या बोलते उसको, गुबरीला बोलते उसके लिए। कैसा होता है वो, काला काला, बिल्कुल भौरे की तरह ही उगा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, अकल सकल से एक जैसे देखते हैं, लेकिन दोनों की अकल में अंतर तो है। बाहर से लगता है इनकी अकल एक सी और सकल एक सी है, लेकिन अंतर बहुत है। भौरा फूल पर जाकर के सुगंध को ग्रहण कर देता है, सुगंधित रस को उसका पान कर लेता है, आनंद की अनुभूति करता है उसमें। और गुबरीला गोबर में रहकर के दुर्गंध में ही अपना जीवन यापन, उसे ही वह अपने 56 भोजन मानता है, जैसे 56 भोग हो, वो तो बिल्कुल 56 प्रकार के भोजन हो। एक बार भोरे ने अपने भाई को इस तरह देखा तो उसे बड़ी दया आ गई कि देखो हमारी जाति का है, हमारे जैसा लगने वाला ये प्राणी, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही भाई हो, और देखो कहां दुर्गंध में पड़ा हुआ है, गोबर में पड़ा हुआ है। उसी दया आ गई कि अरे कहां पड़े हुए हो, इसको तो कृपा करके ले जाना चाहिए, अच्छे आनंद में किसी बगीचे में ले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा इसको। उससे कहा कि भैया तुम कहां पड़े हुए हो, यहां पर देखो कितनी दुर्गंध आ रही हो, तुम इसमें पड़े हुए हो, अरे चलो मेरे साथ चलो, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी तरह के फूल हैं उस बगीचे में, तरह तरह की खुशबू आती है, आनंद से भर जाओगे तो मेरे साथ तो चलो। तो भोरा कहता है कि भैया हमें नहीं जाना, हमें तो यहीं अच्छा लगता है, तुम्हारी जितनी सुख सुविधा तुम अपनी पास रखो, हमारा तो स्वर्ग पूरा इसी में है। उसे गोबर में ही स्वर्ग दिखाई दे रहा है। होता है ऐसा, सबको होता है, आप सबको भी ऐसा ही होता है। लेकिन उसने कहा मानो तो मेरी बात एक बार, चलो तो चल करके तो देखो, यदि आनंद नहीं आए तो वापस तुम अपनी जगह आ जाना, अपने स्वर्ग में मैं मना नहीं करता। बहुत अनुनय विनय आग्रह करने के बाद वो गुबरीला तैयार हो गया कि चलो मित्र ने कहा है तो एक बार मित्र की बात मान लेनी चाहिए। तो मित्र चल पड़ा, अपने दोनों साथ चले। भोरा ले जाकर के एक अच्छी सी बगीचे में ले गया और एक फूल पर, फिर दूसरे फूल पर, फिर तीसरे फूल पर, और आनंद ले रहा था। लेकिन बहुत देर हो गई, उसने उस गुबरीले की तरफ देखा तो बड़ा उदास सा नजर आ रहा था, एक फूल की डाल पर बैठा हुआ था। उसने क्यों भैया, क्यों अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे लिखे क्या, आओ ना इस फूल पर बैठ करके देखो कितना अच्छा आनंद आता है। ये गुलाब का है, ये चमेली का है, चंपक का है, कितने अच्छे फूल हैं इस पर। तो उस पर भी बैठा, उसे कोई आनंद नहीं, उसके चेहरे पर उदासी थी। क्या बात है, क्या आपको रस नहीं आ रहा, अच्छे नहीं लग रहे। भैया हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है जो कुछ आ रहा है। क्या कारण है भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें खुशबू और खुशबू ना आए ऐसा हो सकता है, वो रस ना आए ऐसा नहीं हो सकता। भैया जरा तुम अपना मुंह खोल करके तो दिखाओ जरा। तो गुबरीला ने अपना मुंह खोला तो उसमें देखा कि गोबर की एक गोली अंदर में रखी हुई थी। तो भोरे ने कहा कि अरे क्या रखे होगे तुम अपने मुंह में, इसे निकालो फिर स्वाद आएगा तुम्हारे लिए। अरे भैया इसे नहीं निकाल सकता, बहुत बहुत दुर्लभ चीज है, मैं तो ये सोच करके ही आया था कि यदि वहां कुछ नहीं मिला खाने पीने के लिए तो कम से कम अपना नाश्ता साथ में तो ले चला। जिसके मुख में गोबर की डली रखी हुई हो, गोली रखी हुई हो, उसे फूलों की सुगंध आ सकती है, फूलों का रस आ सकता है, नहीं आ सकता। भोरा जैसा होना चाहिए, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं यहां पर सभी लोग। हम शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, कहां बैठ करके करना चाहते हो, डंडक के गद्दे पर बैठ करके करना चाहते हैं, वे आचार तपस्वरण कर कर करके उन्हें अपने शरीर को कृष कर दिया, जंगलों में रह करके शुद्धात्मा की अनुभूति की, और आज हम यहां बैठ करके एसी में बैठ करके आत्मा की अनुभूति करना चाहते। हाँ भैया हो भी जाए, हो सकती है यदि हो जाए कुछ, लेकिन दूसरी बात तो ये है कि गुबरीला की तरह तुम अनुभूति करना चाहते हो। ये पांचों इंद्रियों की विषयों की गोली तो तुमने अपने मुंह में दबा करके रखी है, और शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, न भूत हो ना भविष्य में, ना कभी होगा और ना कभी हो सकता है, ऐसा सुख किसी को ना मिला है और ना मिल सकता है। पहले उसका विसर्जन करना होगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा तब तक उसके लिए अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। आपके लिए सरल सुगम रास्ता चाही गई है, आप कठिनाई का मार्ग नहीं अपनाना चाहते हो, सरलता में ही आत्मा का आनंद लेना चाहते हो। बंधुओं सरलता तो आत्मा की आनंद लेने में ही है, कठिनाई तो आपकी इसमें है। कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होगा विषय भोगों की सामग्री को इकट्ठा करने में, कोई लेना जाए उसके संरक्षण में, वो हमेशा ऐसी बनी रहे उसके संवर्धन में, शायद लगता है कि इतना पुरुषार्थ यदि आप मोक्ष मार्ग में कहते तो संसार में रहते एक ही पर्याय में मोक्ष हो जाता आपका। लेकिन करें क्या, आपको यहां कष्ट दिखाई देता है और यहां पर सुख दिखाई देता है, ये हमारी भूल है, हमारी अज्ञानता है। हम कैसे कहें कि हम सम्यक दृष्टि हैं, किस मुंह से कहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक धार्मिक दृष्टि के भीतर तो इस तरह की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं कि वो अपने आप वैराग में लीन हो जाता है। महाराज ने एक दिन सुनाया होगा, सम्यक दृष्टिर्भवति नीतम ज्ञान वैराग शक्ति। अमृतचंद जी ने अपने कलश में लिखा है कि सम्यक दृष्टि के भीतर तो दो तरह की शक्तियां हुआ करती हैं, उसके भीतर में विवेक भी आ जाता है उपाधे का, और वैराग की शक्ति भी प्रकट हो जाती है, संसार से उदासीन होने लगता है। ऐसी उदासीनता आ रही है हमारे लिए, देख लेना भैया, ये थर्मामीटर आचार्यों ने दिए हैं, दूसरों पे तो हम बहुत लगाते हैं, जल्दी से लगा लेते हैं, मुनि महाराजों पे लगा देते हैं, कभी अपने भीतर भी लगा करके देखा कि हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्या हम वास्तव में सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, और यदि नहीं है तो क्या फायदा हमारा ऐसा सम्यक दृष्टि कहना। और आज तो समय सारजी में लिखा है आचार्य देसन महाराज ने कि वीतराग सम्यक तो जाते सती साक्षात अवंध को भवती इति मत्वा वयम सम्यक दृष्टि। मैं सम्यक दृष्टि हूं, साक्षात सर्वथा बंधु नास्ति इति नास्ति मंतव्य नास्ति वक्तव्यम। ये आचार्य जयसेन महाराज कह रहे हैं कि वीतराग सम्यक हो जाने के बाद में साक्षात भी बंध नहीं होता, अने बंधन के से अभाव हो जाता है, कर्म का बंध नहीं होता जिसे वीतराग सम्यक हो जाता है। और कोई अपने आप को कहे ऐसा मान करके कि वयम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए सर्वथा बंधु नास्ति, इसलिए हमारे लिए कोई बंध नहीं है। आज यही तो कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि के भोग भोगते हुए भी उनके भोग निद्रा के कारण है। ये समय सार की गाथा का उद्धरण देकर के आपको समझाया जाता, हमें समझाया जाता है, महाराज ने समझाया, कुंदकुंद आचार्य ने हमें समझाया। वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भोग भोगते हुए भी निर्जरा करता, उसके भोग भी सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं। किस सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते जरा विचार कर लेना, इस छुटपुट सम्यक दृष्टियों की बात वहां पर नहीं है, इन क्षुद्र सम्यक दृष्टियों की बात वहां पर नहीं है जो आमूलचूल विषयों में डूबा हुआ है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है। कह रहा वयम सम्यक दृष्टि सर्वथा बंधो नास्ति, महाराज की बात सुनकर के कह रहा है। और महाराज कह रहे हैं वीतराग सम्यक जाते सती साक्षात अवंध का, कहते वीतराग सम्यक हो जाने के बाद में बंध नहीं होता, सो इसने भी मान लिया इति मत्वा ऐसा मान करके कि हम भी तो सम्यक दृष्टि, इसलिए सर्वथा हमारी भी बंध नहीं है। आचार्य कहते इति न वक्तव्यम, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ये अज्ञानता का द्योतक है, तुमने आचार्य के मंतव्य को ठीक ठीक समझा नहीं है, इसलिए उसका गलत अर्थ। आज हम खूब भोग भोग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी तो निर्जरा हो रही है, क्योंकि कुंदकुंद महाराज ने कहा कि खूब भोग भोगो, कोई कर्म बंध नहीं होता सम्यक दृष्टि को, और अपन तो सम्यक दृष्टि है भैया, दुखी हो कोई दूसरे, किसी को कर्म बंध हो कोई दूसरे को, हमें तो नहीं होता क्योंकि अपन तो सम्यक दृष्टि है। उनकी भाषा, उनकी परिभाषा, उनका भाव, उनकी अपेक्षा, उनकी विवक्षा, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा अहित भूगे बिना नहीं रहेगा। ध्यान रखना ये शास्त्र भी हमारे लिए शस्त्र का काम कर सकते हैं, यदि विवक्षा नहीं समझेंगे तो। हमें अपनी आंखों को खोल करके रखना चाहिए कि आचार्य महाराज किस नय की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, किस नय की अपेक्षा से हमें समझा रहे हैं। जब तक ये हमारी आंख नहीं खुलेगी विवेक की, तब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा। हम सम्यक दृष्टि बने,
विषयों से अरुचि होनी चाहेगी, विषयों से उदासीनता आनी चाहेगी, विषयों को भोगते वक्त ऐसा लगना चाहिए कि ये कर्म बंध के कारण है हमारे लिए, तो क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम भोग भोगें और उसमें आसक्त ना हो। आप यदि भोग भोगते हैं तो आसक्ति के बिना भोग नहीं सकते, लेकिन आपको ये पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा कि आकर के आपके भोगों को छुड़ा दे और आपको ऐसी शिक्षा दे दे, नहीं, ऐसा विचार स्वयं करना पड़ेगा कि ये भोग हमारे लिए तो बंध के कारण है। आचार्य समन्वत महाराज कहते हैं पाप बीजे, अरे बड़ा विरोध है आचार्य कुंद में और समन्वत महाराज में, ये कह रहे हैं कि ये भोग सामग्री पाप के बीजभूत है और कुंद महाराज कहते हैं कि ये भोग सामग्री निर्जरागी कारण है। आप किसे मानेंगे? हमारी तो समझ में नहीं आता भैया, आपकी आ रहा है समझ में? आपको तो आता है समझ में क्योंकि आप तो स्वाध्याय करते हैं भैया, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अपन तो बहुत अज्ञानी हैं, बहुत कम पढ़े हैं, अल्प ज्ञानी हैं, हमें समझ में नहीं आता ये दो तरह की बातें क्या है। और जो अपने को समझ में आया वो आपसे हट करके ही आया हमारे लिए, तो आपने कुछ और समझा है, हमने कुछ और ही समझा है। हमने तो ये समझा है इसके लिए कि पाप के बीजभूत इसलिए हैं क्योंकि ये जीव संसारी संसार के विषयों में लखपत है, बिल्कुल उसमें घसा पसा हुआ है, आसक्त है, और जब तक इसकी मिथ्यात्व और अवृत्ति ये दोनों नहीं हटेंगी तब तक इसकी वो स्थिति नहीं बन सकती है वीतराग सम्यक्त की। कसायों का उत्सवन और क्षय उत्सव जब तक नहीं होगा तब तक वीतराग सम्यक्त स्थिति इसकी नहीं बन सकती है। निश्चय सम्यक्त जिसे आप कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन जिसे आप कहते हैं, वो सम्यक दर्शन वीतराग चारित्र का अविनाभूत है और वीतराग चारित्र श्रेणी में हुआ करता है, नीचे नहीं होता, ध्यान रखना। आठवें गुणस्थान से वीतराग चारित होता है, उसके साथ होने वाले सम्यक दर्शन का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है, उसी सम्यक दर्शन का नाम वीतराग सम्यक दर्शन है। इस समय सार जी का उद्घोष है, इसे खोल करके समझ लेना चाहिए और अपने भीतर में पड़ी हुई ग्रंथियों को एक बार हमें विमोचित कर देना चाहिए। यदि आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, हमें किसी का आग्रह नहीं होना चाहिए कि ऐसा और ऐसा नहीं, ना व्यवहार का आग्रह ना निश्चय का आग्रह। आग्रह तो आत्मा की कल्याण का होना चाहिए कि कौन सी विवक्षा से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, वो विवक्षा हमें समझनी है। यदि सापेक्षता से हम चलेंगे तो मार्ग सत्य मार्ग की हमें प्राप्ति हो जाएगी, शांति की हमें प्राप्ति हो जाएगी, और यदि निरपेक्ष न्याय के सहारे चलेंगे, मिथ्या न्यायों के सहारे चलेंगे, तो हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। हम इन भावनाओं को समझें कि भोग निर्जरा के नहीं, ये हमारे लिए तो बंध के कारण है और पाप के बीजभूत हैं, इसलिए इनमें किसी तरह की कोई आकांक्षा हम नहीं रखें, इनकी आकांक्षा से दूर हो जाएं, तो हमारा दूसरा कदम सत्य मार्ग पर जो बढ़ रहा है, जो निकांक्षित का, वो हमारे भीतर में एक नया स्फूर्ति नई आनंद की लहर लाएगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की
धर्म का स्वरूप और वो भी सच्चे धर्म का स्वरूप हमें समझना है। हम कहीं ये मान तो नहीं बैठे हैं कि धर्म जो शास्त्र में लिखा है वहीं तक सीमित है। अगर हम ऐसा मान बैठे हैं तो हमें अपनी गलती सुधारना पड़ेगी। धर्म शास्त्र में तो है ही, शास्त्र में तब आया है जब किसी के जीवन में वो घटित हुआ है। पूरा धर्म किसी न किसी के लिए अनुभव गम रहा है। पांच पापों से हमें बचना चाहिए ये तब कहा गया है और उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है जिसने पांच पापों से बच करके अपने जीवन का कल्याण किया है। किसी ने ऐसे ही चलते चलते सुनी सुनी बात नहीं कही है हमसे, अपने जीवन में अनुभव करके कही है। ये बात हमें बहुत ध्यान में रखने की है कि धर्म वो है जो हमारे जीवन में हम धारण करते हैं और जिसके धारण करने से हम सच्चे सुख में पहुंच जाते हैं। धरति उत्तमे सुखे, जो हमें इस संसार के दुख से बचा लेता है और उत्तम सुख तक पहुंचा देता है, वास्तव में वो धर्म है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यही धर्म है। सामान्य जीवन में भी इन तीनों चीजों की बहुत जरूरत होती है। आपने कभी ट्राईपॉड देखा हो, उसमें से एक अगर कोई उसका पैर अलग कर दिया जाए तो दो पैरों पर वो टिक नहीं सकता, या कि एक ही रह जाए दो अलग कर दिए जाए तब भी उसका कोई महत्व नहीं होगा, वो जिस उपयोग में आना चाहिए उस उपयोग में नहीं आएगा। इसी तरह जहां भी लिखा हो कि सम्यक दर्शन, वहां समझना कि ज्ञान और आचरण भी हमें साथ में रखना हो, और जहां कहा हो कि चारित्रम खलु धम्मो, वहां हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चारित्र वही है जो सम्यक दर्शन और ज्ञान से समन्वित है। जहां भी सम्यक ज्ञान की बात आए वहां पर सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी साथ में जोड़ना, तभी हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा। जब अविरत सम्यक दृष्टि होता है और टोडरमल जी साहब से पूछते हैं कि मोक्ष मार्ग हुआ क्या अविरत सम्यक दृष्टि को, तो जवाब देते हैं कि आगे होसी अवार कोनी निर्धार भया, आगे होएगा ये तय हो गया है, अभी है नहीं मोक्ष मार्ग। अकेले सम्यक दर्शन के हो जाने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। सम्यक दर्शन के साथ हमारे ज्ञान की निर्मलता तो आ ही जाती है, लेकिन उसके साथ हमारे जीवन में जो आचरण है वो भी आना चाहिए। मोक्ष मार्ग ही नहीं कह रहे हैं जब तक कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों ना आए। हम जबकि सम्यक दर्शन की बात पढ़ रहे हैं तो आधा अधूरा लेके ना उठ जाएं। हम ध्यान रखें कि हमें सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को भी साथ लेके चलना है। कुछ लोग सिर्फ आचरण को ही महत्व देते हैं, उनसे भी हमें कहना है, आचार्यों ने उनके लिए भी कहा है कि ऐसा आचरण जो सम्यक दर्शन से युक्त है वो आचरण तुम्हारे कल्याण का कारण है। वैसे वो आचरण पुण्य तो देगा, नैतिकता तो उसमें है, लेकिन धर्म तब कहलाएगा जबकि वो सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाएगा। चारित्र के लिए श्रद्धा, ऐसा हम कह देते हैं बहुत जल्दी से कि चारित्र लेने से पहले बहुत सारी अपने को श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक दर्शन होने के बाद ही कोई व्रत नियम लेना चाहिए। अच्छी बात है भैया, ये तो लिखा ही हुआ है, लेकिन हम सम्यक दर्शन की पहचान कैसे करेंगे? तो हमारे लिए परिभाषा दी है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होवे तो सम्यक दर्शन मानना, व्यवहार से हमारे सम्यक दर्शन है। अब तुम व्रत नियम संयम लेने के योग हो गए, आचार्यों ने तो इतना ही लिखा है। करनानी योग के अनुसार जो सात प्रकृतियों का क्षय उपशम और क्षय उपशम होने पर जो आत्मा के परिणामों में निर्मलता आती, विशुद्धि आती है, वो सम्यक दर्शन तो हम आज किसी को डिक्लेयर ही नहीं कर सकते कि इनको हो गया है। छह ढाला में तो बहुत आसानी से लिख दिया है कि देव जिनेन्द्र, ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं बनानी है। देव कौन है हमारे? जिनेन्द्र। और गुरु परिग्रह बिन, गुरु वे हैं जो कि परिग्रह से रहते हैं, और धर्म दया जुत जानो, इतना ही पर्याप्त है। देव गुरु शास्त्र का स्वरूप कोई पूछे तो अपन ने पिछले दिनों समझा था कि जो वीतरागी हैं सो देव हैं, जो वीतरागता के मार्ग पर हैं सो वे गुरु हैं, और जो वीतरागता का उपदेश है सो वही हमारा धर्म है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और आसानी से और समझने के लिए एक नई चीज जो मैं कल अचानक ध्यान में आई कि अरे बहुत आसान सी एक दो लाइन में हमें पंक्तियों में दे दी है कि देव तो जिनेन्द्र हैं और हमारे परिग्रह से रहित गुरु हैं, और धर्म तो दया से युक्त होवे सो धर्म है। इनकी श्रद्धा अगर हमारे जीवन में है तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर तो हमें जल्दी से व्रत नियम संयम ग्रहण करने की, जितना बने भैया, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई एकदम महाव्रत ले लेगा, आसान नहीं है, वर्षों की तपस्या चाहिए और वर्तमान का पुरुषार्थ भी चाहिए, कषाय की मंदता तत्व का अभ्यास होवे, परिचय सहन करने की शक्ति होवे तो महाव्रती बने, ऐसा लिखा हो। अभी तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, कषायों को मंद करना पड़ेगा और तत्व का अभ्यास भी हमें करना चाहिए रोज रोज, और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा और व्रत नियम संयम की आकांक्षा। कहते हैं, अभी मैंने आपसे पिछले दिनों भी शायद कहा था कि श्रावक वही है जिसको की महाव्रतों की लालसा है, वो श्रावक है, और जिसने महाव्रत ले लिए वो तो श्रमण है ही, लेकिन श्रावक जो कि अगर महाव्रतों की लालसा नहीं रखता तो कहते वो गृहस्थ भी नहीं है, ऐसा लिखा उसमें। महाव्रतों को धारण करने वाले के प्रति तो उसकी विनय होगी ही, महाव्रत में कब धारण करूं ऐसी लालसा से युक्त होता, इसलिए हम उसको श्रावक कह रहे, गृहस्थ कह रहे, नहीं तो हम कहेंगे नहीं अमृत। ये आशाधर जी ने लिखा सागर धर्मामृत। और जब किसी को कोई चीज अच्छी मालूम पड़ जाए, किसी चीज की रुचि जागृत हो जाए और वो उस चीज को ग्रहण ना करे, ऐसा होता है क्या? एक छोटे से बच्चे को देख लो, अगर उसके हाथ में चॉकलेट दे दो और उसने एक बार अगर चख के देख ली कि चीज तो बड़ी काम की है, मीठी चीज है, फिर आप लात करो कि भैया अब इन्हें खाओ, संजा को खा लियो, घंटा भर बात कर लियो, हाँ तुम इतने उतर तो हो तनक, आंख तो भरकाओ, सुई तो हमें खा लेने, फिर देख पूछना तक नहीं हमको, थोड़ी सी आंख यहां से वहां आपकी, आप बात करते रहो उसको कि अभी नहीं खाना, मना कर रहा हूं, ठीक है, आप जब तक नहीं, जब तक देख रहे हैं तब तक नहीं खाएगा, और जब आपने नहीं देख पाए तो आपने उसने कब खा ली, और हमें सम्यक दर्शन हो जावे और हमें अपनी आत्मा का अनुभव हो जावे, हमें लगने लगे कि वस्तु की वास्तविकता क्या है, और उसके बाद भी हम उस वास्तविकता की तरफ एक कदम न रखें, ऐसा हो सकता है क्या? आप स्वयं विचार करिएगा, अगर कहीं हमारे जीवन में व्रत नियम नहीं आए हैं तो समझना कि अभी हमारी श्रद्धा में ही कमजोरी है, हमें भगवान के कहीं व्रत नियम संयम में श्रद्धा नहीं, तभी तो हम ले नहीं रहे हैं। ये बात जुदी है कि हम ऐसा बहाना कर सकते कि क्या करें, हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है इसलिए हम नहीं ले पा रहे, वो दर्शन मोहिनी तो चली गई, सो सम्यक दर्शन तो हमारा पक्का हो ही है। ऐसा कई बार हमारे मन में विचार आ जाता है, क्या करें, संस्कार वश आता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें उस संस्कार को तोड़ना है, जो जो भगवान ने कहा है वो सच्चा है, व्रत भी तो भगवान ने ही कहे हैं और सम्यक दर्शन की चर्चा भी भगवान ने करी, हमें दोनों ही मंजूर है। अब हम अपनी शक्ति विचार लेंगे कि हमारी शक्ति कितनी है, उस शक्ति के अनुसार करेंगे। बड़े से बड़ा अज्ञान, मैंने आपसे पिछले दिनों भी कहा था, अपन रिवाइज कर रहे हैं, बड़े से बड़ा अज्ञान है शरीर को अपना मानना। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, आत्मा की तीन अवस्थाओं में से सबसे निकृष्ट अवस्था है बहिरात्मता। फिर आगे कहते बहिरात्मता ही ये जानी तजे अंतरात्म पूजे। क्या उपाय है अंतरात्मा होने का और बहिरात्मा का लक्षण क्या है? जब जब हमारे मन में शरीर और आत्मा की एकमेकता मालूम पड़े तब तब समझना कि बाहर निकल गए, अपन अप्रोच अपनी ठीक नहीं है, हम वास्तविकता से बाहर जा रहे हैं, ऐसा हमारे मन में भान हो जाना चाहिए, ऐसा हमारे मन में प्रतीति होनी चाहिए इस बात की। और जब जब हम शरीर को अलग अपने से देख रहे हैं, है ही वो अलग, हम देख नहीं पाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि प्रयास करिएगा, अगर आपके भीतर सच्ची श्रद्धा है तो आपके विचारों में ये चीज आना शुरू हो जाएगी। एटीट्यूड चेंज होता है तो थॉट्स में भी चेंज आता है, और थॉट्स में चेंज आने के बाद एक्शन में भी चेंज आए बिना रहता नहीं, ये चीजें एकदम कनेक्टेड हैं। जो अपने सिर्फ एक्शन को बदल लेता है उसके थॉट्स तो वही के वही हैं और उसके एटीट्यूड भी वही है, तो आप पकड़ में आ जाएंगे बहुत जल्दी कि ये ऊपर ऊपर से सिर्फ आचरण का पालन कर रहे हैं, इनका ओपिनियन इनका एटीट्यूड तो वही है ज्यों का त्यों, जो उनका विचार सोच चल रहा है वो अलग ही है। तो हमने आपसे कहा भी था कि भले कितना अच्छा आचरण हो गए, भले कितना अच्छा ज्ञान हो गए और आंख ठीक न हो गए, तो अपन फौरन कह देते कि भैया है तो सब कछु अच्छो लेकिन इनकी आंख ठीक नहीं है, इनके देखने का ढंग ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं देखते हैं, भले आप कहते हो कि बहुत आचरण बान है, भले ही घंटे भर पूजा करते लेकिन जब बाहर निकलते तो इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, ये क्या चीज है, इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम मैं एटीट्यूड कहता हूं, इसको बहुत शॉर्ट में कहता हूं। हमारा क्या सोच है, हमारा हर चीज के बारे में हमारा क्या ओपिनियन है, हम चीज को कैसे सोचते हैं, हम शरीर के बाबत क्या सोचते हैं, हम आत्मा के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज हमारे भीतर क्लियर है या नहीं है। लाख आप सारी चीजें करते रहिएगा, लेकिन इस चीज को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे अपने भीतर कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, सामान्य सा व्यक्ति जिसको हम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, फिर भी लोग जिसको संत की हैसियत से मानते हैं, आपने कभी नाम सुना हो रामकृष्ण का, वो जब मरने लगे थे तब शारदा उनकी जीवन साथी थी, उनकी आंख थोड़ी गीली हो गई तो उन्होंने कहा सुनो मैं तो नहीं सोचता था कि तुम ऐसा करोगी, तुम मेरी जीवन साथी मेरे साथ जीवन भर रही फिर भी नहीं समझ पाई, अगर इस देह के मरने से सोचती हो कि मैं मर जाऊंगा तो रोना शुरू कर दो और जिंदगी भर रोते रहना, और अगर ये सोचती हो कि शरीर के मरने से रामकृष्ण नहीं मरेगा, रामकृष्ण फिर भी मरे फिर भी जिंदा रहेगा, तो एक आंसू नहीं गिरना चाहिए। अब आप इसको क्या कहेंगे, हम अपने से उसको टैली करें कि हम किस तरह से शरीर से अपने को एक मेक करके चलते हैं। बात जरूर हम शरीर से अपने को जुदा होने की मानते हैं, लेकिन हमारी जो भीतरी उससे जो आसक्ति है वो कितनी अधिक है, कम हुई है कि नहीं हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितने मनोरंजन के साधन हम इकट्ठे कर रहे हैं, जितनी सुख सुविधाएं शरीर के लिए जुटा रहे हैं, इसी से मालूम पड़ रहा है कि हमारी दृष्टि अभी शरीर पर है, शरीर से हम अपने को पृथक नहीं समझ पा रहे हैं। लाख हम बहुत बढ़िया से बढ़िया बात क्यों ना करें, जितना हमारा टाइम अपने शरीर के सजाने में जा रहा है, मानिएगा कि वो हमें अपने आत्मा से उतने दूर करने के लिए हम अपने हाथ से उपाय कर रहे हैं। ये चीज आपको समय रहते समझ लेनी चाहिए। रायचंद जी के बारे में भी सुना होगा, चले जाते थे रास्ते से, उनके और मुमुक्षु जन उनके साथ चले जा रहे थे, अचानक एक व्यक्ति जो है एक हाथ में घी का घड़ा लिए चला जाता था और सिर पर छाछ रखे हुए था, तो राम रायचंद जी ने पूछ लिया अपने मुमुक्षुओं से क्यों इसको धक्का लगेगा तो दोनों में से किसको बचाएगा पहले, ना घी का घड़ा बचाएगा, छाछ वाला तो गिरता तो गिर जाने देगा, और बोले जब तुम्हारे ऊपर ऐसी स्थिति आएगी तो किसको बचाओगे, आत्मा को कि शरीर को, बस इतनी सी बात पूछनी हमको। बात तो अपन बहुत करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर ऐसी